Oh, yeah. प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शक श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय।
श्री राधा गोविंद देव की
जय।
श्री पंच तत्व की
जय।
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय।
हृदय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय एक और श्लोक संख्या 14। आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणान् तत्सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयान्। आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणान् तत्सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयान्। आपन्न संस्कृतिं घोरा आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणान् ततसद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणान् ततसद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणान् ततसद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। माताजी आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणान् ततसद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। शब्दार्थ आपन्न फंसे हुए संस्कृतिम जन्म मृत्यु के चक्कर में घोराम अत्यंत उलझे यत जो नाम परम नाम विवशः अनजान में घृणन उच्चारण करते हुए तथा उससे सद्यः तुरंत विमुचेत मुक्त हो जाता है यत जो विभेति डरता है स्वयं स्वयं भयम साक्षात भय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार है, जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य, वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण हरेक के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण हिरण्यकशिपु कंस जैसे महान असुर तथा अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियाँ अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की उनमें पहचान होती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। इससे सूचित होता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उसमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़ा संकट उपस्थित होने पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबारा जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम हम रोज पढ़ रहे हैं और श्रीमद् भागवतम को रोज सुन रहे हैं। बहुत एक प्रकार से भाग्यशाली जीव हैं बाकी जीवों में से कि भगवान कि ये जो कथा हैं जो श्रीमद् भागवतम में दी गई हैं उसकी काफ़ी महानता का वर्णन अनेक ग्रंथों में करते हैं। चैतन्य भागवत में आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भागवतम की सर्व श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। तो कहते हैं चारी वेद उपनिषद जत किचु है कि ये भागवतम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्यों है। तो महाप्रभु कहते चारी वेद उपनिषद जत किचु है तार अर्थ लय व्यास करेला संशय कि जितने सारे उपनिषद हैं वेद हैं इन सबको एकत्रित करके और उनका जो इसेंस है सार है सबसे आखिरी में अपने जीवन के श्रील व्यास देव ने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद श्रीमद् भागवतम की रचना की। और वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवते भक्ति तत्व है तेई भागवत सम कौन शास्त्र नहीं। तो श्रीमद् भागवतम ये भक्ति शास्त्र है और भागवतम के समान कोई और शास्त्र नहीं है। तब 12वें स्कंद में भागवतम की ग्लोरीज को शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो कई प्रकार से वो भागवतम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि बाकी और ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है यदि किसी व्यक्ति का श्रीमद् भागवतम के प्रति अनुराग विकसित हो जाता है, क्योंकि हमारे जो गोस्वामीज हैं उनकी खासियत आप देखेंगे कि उन्होंने जितनी भी शिक्षा दी है वो श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए दी है, और ये स्थापित किया है कि हर एक जीव का जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे और भागवतम का अध्ययन करे। और ये बात स्थापित करने के लिए जो जीव गोस्वामी है उन्होंने षड् संदर्भ लिखे, श्रीमद् भागवतम से 6 टॉपिक लिए और उनको विस्तार से बताया और ये स्थापित किया कि आपको अंतिम रूप से श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। तो हम जब भी किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं या किसी ग्रंथ के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले उनके गुणों का वर्णन करना चाहिए या उनकी महिमा का स्तुति करनी चाहिए। स्तुति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनकी कृपा हमें मिलती है। जैसे ब्रह्मा की लीला में आता है दशम स्कंद में कि उन्होंने वो बछड़ों की चोरी कर ली और फिर उनको पता चला बाद में कि मैं कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति हूँ, कि स्वयं भगवान को मैं समझ नहीं सका और मैंने उनके प्रति अपराध किया है। तो कृष्ण बुक में 14वां जो अध्याय है प्रभुपाद लिखते कि ब्रह्मा कहते कृष्ण को कि हे कृष्ण, मैं आपकी अभी स्तुति कर रहा हूँ ताकि स्तुति करेंगे तो आप मेरे ऊपर दयाद्र हो जाएंगे, आप कृपा करने लगेंगे, प्रशंसा। हम भी कोई भी व्यक्ति बड़ा क्रोधित है या किसी को हमें किसी का फेवर चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से कोई भी जो शास्त्र है या हम पढ़ते भी हैं तो जो ऑथर हैं उनके प्रति हमें प्रार्थना करनी चाहिए और जो ग्रंथ है उसकी महिमा के लिए कुछ प्रेयर्स हमें करनी चाहिए। तो वो जो ग्रंथ है या वो जो शास्त्र है वो हमें समझने, हम समझना शुरू करते हैं या अच्छी तरह से हमें रिवील होता है, समझ में आता है। तो आपने भागवतम की काफ़ी चर्चा की है पहले अध्याय की, और इस पहले अध्याय में 6 जो प्रश्न हैं वो जो ऋषिज हैं वो नैमिषारण्य में पूछते हैं। तो इस श्लोक के ये और अगला जो श्लोक है उसमें शायद 4वां या 3रा प्रश्न का वर्णन हो रहा है, और जिसमें कल आपने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो ऋषिज हैं वो भगवान की कथा की महानता को वर्णन करते हैं। और आज के श्लोक में जो ऋषिज है वो स्थापित करते हैं भगवान का जो पवित्र नाम है उसकी महिमा को, कि भगवान का ये जो नाम कितना शक्तिशाली है और कितना महत्वपूर्ण है। तो इस अनुवाद में और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में दो चीज़ों को स्थापित करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो जगत है जन्म मृत्यु क्या है, झंझट है। झंझट का मतलब इंग्लिश पर, हिंदी में तो ये ट्रांसलेशन है, मतलब आप तंग हो जाते हो किसी चीज़ से या बहुत कष्ट होता है, विपदाएं होती हैं, आप उससे मुक्त होना चाहते हो। हाँ, तो ये जो जीवन हम जी रहे हैं वो बहुत ही क्लेशमय है, कष्टमय है, दुखमय है, तो इसे हमें मुक्त होना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को जो भगवान का पवित्र नाम है उसकी गंभीरता से शरण लेनी चाहिए, और उसकी जब शरण लेंगे तभी ये जो डेंजर सिचुएशन है उससे मुक्त हो सकते हैं। पहले तो प्रॉब्लम क्या है कि हम ये नहीं जानते हैं कि मैं डेंजर सिचुएशन में हूँ। हाँ, पहले हमें यही अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं वास्तव में जिस स्थान में रह रहा हूँ वो बहुत ही विपदामय कष्टमय जगत है। ऐसा रियलाइजेशन भी नहीं है और ऐसी भावना भी नहीं है हमारी, हमें लगता है कि मेरे लिए ये जगत बनाया है और मैं यहाँ निरंतर सुखमय जीवन यापन करूँगा और हमेशा हमेशा इस जगत में आनंद प्राप्त करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम इस जगत से बाहर जाने की नहीं सोच सकते। हम पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे इस जगत में ही सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज करूँ और इसी जगत में स्थायी रूप से रहूँ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते नाना दुख जरा जरा, शरणागति में कहते कि नाना दुख, कि व्यक्ति इतना मूर्ख है कि उसके जीवन में अनेक अनेक कष्ट आते हैं और वो मूर्खता की भांति उनको झेलते रहता है और इसी जगत में हाँ पड़ा रहता है। बल्कि ये शरीर अपने आप में दुख है, और सुख क्या है? जब दुख कम हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है मैं सुखी हूँ। हाँ, प्रभुपाद के ग्रंथों में प्रभुपाद ने कई स्थानों में इस चीज को प्रभुपाद स्थापित करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है कि हम भूल जाते हैं कि यह जगत दुखमय है। इसलिए जो शास्त्र होते हैं या भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमें बार बार रिमाइंड करते हैं और ये समझाते हैं कि तुम जो ये घर आपने किराए का ले रखा है बॉडी की तुलना, प्रभुपाद का एक लेक्चर हम सुन रहे थे कल, तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ये शरीर एक ऐसा मकान है जो हर बार हमें चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन कभी नहीं सोचते कि मुझे अभी परमानेंट घर की आवश्यकता है, हाँ, दिव्य शरीर भगवान के धाम में। बल्कि इस मकान को चेंज करने में लगे हुए हैं हम, और इस मकान में हर समय चेंजेस आ रहे हैं और कई प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, और इस शरीर से, इस मकान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनसे हम आसक्त हो जाते हैं। हाँ, स्त्री हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी एसेट हैं हमारे पास, जो चीज़ें हैं, हाँ, जॉब हैं, इन सबसे हम आसक्त हो जाते हैं। और फिर जो व्यक्ति हैं, जैसे कि जो गृहस्थ जीवन में है, वो सोचता है कि ये सारा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है। हाँ, वो क्या सोचता है कि मेरे बिना मेरी पत्नी जीवित नहीं रह सकती, मेरे बिना मेरे बच्चे कैसे रह सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि व्यक्ति इस प्रकार से जीवन भर कष्ट उठाता है, और उस कष्ट से क्या होता है कि उसकी अटैचमेंट अपने घर और परिवार और संतान इनसे अधिकाधिक बढ़ती जाती है, और इतनी आसक्ति होती है कि जब उसका मृत्यु का समय आता है, जब वो मृत्यु के शैया पर लेटा होता है, तो वो सोचता है कि मैं अभी क्या करूं। हाँ, वो जो उसकी चिंता होती है, हाँ, शास्त्र कहते हैं सुतम इत रमनीर चिंता, हाँ, सुत बच्चों की, हाँ, मित रमनीर पत्नी की, और जो भी उससे संबंधित है मदर फादर, उनकी चिंता करता है, हाँ, मृत्यु के समय। और इससे क्या होता है, वो ये सोचता है कि ये सारे लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, मैं नहीं रहूँगा तो मेरी पत्नी की देखभाल कौन करेगा। तो इस प्रकार से सोचकर वो व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है कष्टमय स्थिति में, और फिर आगे उसे नया जो भौतिक शरीर है वो धारण करता है। तो इसलिए हम डिवोटीज बनने के बाद भी या कृष्ण भावना में आने के बाद भी इस बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हर एक भक्त को दो चीज़ों का हमेशा स्मरण करना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था शायद, एक है हर समय मृत्यु का स्मरण करें, और दूसरा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही गंभीरता से इस बात को बताते हैं अपने शिष्यों को कि जो व्यक्ति वास्तव में इस भौतिक जगत की जेल से बाहर निकलना चाहता है और हमेशा हमेशा के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को ये दो चीज़ें अपने जीवन में हर समय स्मरण रखनी चाहिए। एक है मृत्यु, और दूसरा क्या है? भगवान का पवित्र नाम। तो मृत्यु को क्यों स्मरण रखे? क्योंकि मृत्यु को स्मरण रखेंगे तो हमारा ईगरनेस बढ़ेगा कृष्ण भावना में या कृष्ण की ओर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें तो अलर्टनेस आएगा हमारी एक्टिविटीज में, हम अलर्ट रहेंगे, हाँ, हर समय अलर्ट रहेंगे कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु होने वाली है, और तब हम फिर कृष्ण की सेवा में या भगवान नाम लेने में कॉन्शियस होंगे, मतलब सावधान होंगे। अन्यथा हम अभी किस सिचुएशन है, अलर्ट नहीं है, हाँ, हम सोच रहे कि बहुत मेरी कोई मृत्यु नहीं होने वाली, कोई कष्ट नहीं, विपदाएं नहीं है, अभी जो जीवन में जी रहा है बहुत अच्छा है, हाँ, भक्ति कहाँ है मेरी, बैकग्राउंड में भक्ति है, हाँ, सिचुएशन होती है। जैसे हम इतने भौतिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को मग्न कर देते हैं, हाँ, तो भक्ति बैकग्राउंड में चली होती है, हाँ, बैकग्राउंड में भक्ति हो रही है, तो उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भक्त है उसको सावधान होना चाहिए और उसको इस बात का स्मरण रखना चाहिए, हाँ, कि मेरा जो शरीर है वो किसी भी क्षण ये हो सकता है छूट सकता है, इसलिए वो रात को सोने में भी सोने के लिए भी जाता है बेड पर डिवोटी, तो सोने से पहले भगवान को प्रणाम करता है, आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करता है और प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, आप कितने दयालु हैं कि आपने आज पूरा दिन मुझे दिया था कि आज मैं फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हो सकता था, लेकिन आज मैं कृष्ण भावना भावित नहीं बना। प्लीज़ और एक दिन मुझे और दीजिए मुझे, ताकि मैं कल भी पूरा ट्राई करूँगा हाँ कि फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस हो जाऊँगा। हाँ, अन्यथा हमें भावना, हम इतना कन्विंस करते हैं कि हमें इतना ये होता है, फेथ होता है हाँ कि कल सुबह मैं जीवित रहूँगा, कल मैं कार्य करूँगा, बल्कि ये नहीं ध्यान रहता कि रात को ही शरीर छोड़ सकता हूँ। हाँ, निद्रा में ही जैसे रानी एलिजाबेथ ना, विक्टोरिया जो किंग क्वीन थी लंदन की, उसने रात को सो गई, उसके जो सर्वेंट्स थे जब उसको उठाने गए सुबह, देखा कि रात को ही उसने शरीर छोड़ा है। तो लेकिन हम समझते हैं कि अभी तो मैं भक्त बन गया हूँ, भक्त नहीं बने हैं हम, प्रोसेस में हैं, हमें तो हमने तिलक और कंठी और माला और सेवा में लगा हूँ, तो अभी नहीं, मेरे आयु बढ़ गई है, कई बार हम सोचते इतने जल्दी नहीं शरीर छोड़ूंगा। तो लेकिन क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि हम इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी क्या कहते हैं इमरजेंसी को, तत्काल, तत्कालता महसूस नहीं कर रहे हैं हम कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। हाँ, इसलिए हम बार बार वो स्टोरी सुनते हैं महाभारत की, जो युधिष्ठिर महाराज ने के लिए कि से संबंधित है, कि द्रौपदी को जब प्यास लगी थी तो पांडवाज और कुंती महारानी जब वनवास में थे तो कहा कि मुझे प्यास लगी, मेरे लिए पानी तो लाइए। तो हर जो हस्बैंड, पांच पांडवाज उनके पति बिल्कुल तैयार होते हैं सेवा के लिए, तो नकुल जाते पहले और जल लाने के लिए एक सरोवर के पास। तो वहाँ पेड़ पर ही जो यक्ष होता है तो वो कहते हैं कि हे नकुल, देखो पानी लेने से पहले मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उनका आंसर देना आवश्यक है, प्रश्न आवश्यक है उत्तर देना। तो नेग्लेक्ट करता है, कहता पानी पियोगे, पानी लोगे तो आप शरीर छोड़ सकते हो, मर जाओगे। तो लेकिन उसको मानता नहीं उस बात को, पानी लेता है और जैसे थोड़ा पीता है तो उसी समय वो शरीर छोड़ता है। तो बाकी पांडवाज भी जाते, चार पांडवाज वहाँ शरीर छोड़ते हैं। अंतिम में जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज बहुत धीर और गंभीर और हर बात पर विचार करते हैं बड़े अच्छी तरह से। तो जैसे उस यक्ष ने पूछा था कि आप मेरे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप दीजिए, तो वो उत्तर के लिए वो पूछते हैं, तो उस समय वो पूछते कि मेरे प्रश्न हैं, चार प्रश्न पूछे थे, तो ये कहते कि किम आचार्य, क्या आचार्य हैं, क पंथा, कौन सा पंथ स्वीकार करना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और वो कहते क सुखी, कौन व्यक्ति सुखी है, और एक प्रश्न था मुझे याद नहीं है। तो इस प्रकार से प्रहलाद उनको जब युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा था किम आचार्य, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम। तो ये जो स्टोरीज है या ये जो कोट्स है ये केवल सुनने के लिए नहीं है, है ना, हमें एक एक चीज पर विचार करना चाहिए। जैसे कि जब हम स्टडीज करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो श्वेताश्वतर उपनिषद या किसी उपनिषद में आता है कि किस प्रकार से हमें स्टडी करनी चाहिए। उसमें आता है कि चार स्टेप्स हैं अध्ययन करने के लिए। तो पहली स्टेप है कि व्यक्ति को श्रवण और कीर्तन करना चाहिए अच्छी तरह से, और श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, मनन करना चाहिए। मनन करे, मनन करे मतलब सोचे और विचार करे उस चीज पर जो हमने सुना है या जो हमने पढ़ा है या जो हमने बोला है, वो चीज़ पर हम विचार करें। और थर्ड जो स्टेज है उसको कहते हैं निविध्यासनम, निविध्यासनम हाँ, निधिध्यासनम, निधिध्यासनम कहते हैं। तो वो निधिध्यासनम क्या है कि जो हमने सुना है और जिस पर विचार किया है, सोचा है, मनन किया है, उसको हम निधिध्यासनम का मतलब है कि प्रैक्टिकल अप्लाई करें हमारे एक्टिविटीज में। और जो फोर्थ स्टेज है उसको कहते हैं ध्यान या फिर समाधि, मतलब फिर वो व्यक्ति जो भी एक्टिविटीज और जो भी सेवा उसके पास होती है वो उसमें फुल्ली कॉन्शियस होता है, और उसको उस सेवा में या उस एक्टिविटीज में कृष्ण का स्मरण होता है। तो हम सोचते हैं कई बार कि क्यों नहीं, मैं इतना लगता है कि बस कई ऐसी फिजिकल वर्क करते जा रहा हूँ, लेकिन क्या चीज़ है कि मुझे नहीं, क्यों नहीं स्मरण हो रहा है कृष्ण का। तो हमें इस प्रकार से जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, तो वो चीज़ को हमें इन चार स्टेज को बताया है। और जो भक्त इस चीज़ को फॉलो करता है तो दिन ब दिन वो कृष्ण भावना में उन्नति करते जाता है। क्योंकि हमारा क्या होता है, हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, हम कहते हैं कि श्रवण कीर्तन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, लेकिन श्रवण कीर्तन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मनन भी करना चाहिए। और मनन के बाद, हाँ, जैसे हमें 10 चीज़ें आज पढ़ी होगी, 10 पॉइंट नोट किए होंगे, तो हमें कहना सोचना चाहिए कि कल 10 में से 1 चीज़ मैं अपने जीवन में अप्लाई करूँगा। तो इस प्रकार से जो भक्त अपना आध्यात्मिक जीवन सीरियसली लेते हैं और शुरू करते हैं, तो वो उनका हृदय और उनका जो एक्टिविटीज़ है उनमें चेंज आने लगता है। तब हम देख सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितनी तीव्रता से उन्नति करते जा रहे हैं। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि कितना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेक्चर्स देते हैं, लेकिन क्या है, फिर भी हमें लगता है कि कोई चेंज महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे ड्राई आध्यात्मिक जीवन सूखा सूखा नज़र आ रहा है या महसूस हो रहा है। उसका कारण यह है कि हम आगे जो निधि ध्यासनम है वो नहीं करते, हाँ, जिसके कारण भी सेवा में भी कुछ क्षणों के बाद हम सेवा भी अच्छी नहीं लगने लगती, उससे भी हम पक जाते हैं सेवा से, है ना, एक एक सेवा। तो लेकिन जो डिवोटी होता है, हाँ, वो सेवा में और आनंद आता है, हाँ, भगवान की सेवा करने में। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज को जब ये पूछा था तो उन्होंने कहा, आहानी आहानी भूतानी गच्छन्ति हिमालयम शेषस्थावर इच्छन्ति के माता किम आश्चर्य अतः परम, कि क्या ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मैं देखता हूँ, हाँ, मेरे सामने, हाँ, शरीर छोड़ रहे हैं, जैसे हम अभी आ रहे थे तो ये कुत्ते के ऊपर से गाड़ी चली गई कोई, तो उनका शरीर बिल्कुल ये हो गया था, बिल्कुल टूट फूट गया था बॉडी। तो ऐसी कई विपदाएँ, कई घटनाएँ, हाँ, हम देखते हैं, तो लेकिन हम उससे शिक्षा नहीं लेते, हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, हे अर्जुन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ज्ञान की आँखों से ये जगत को देखता है और रियलिटी को जानता है। तो ये अलर्टनेस आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु का स्मरण करना चाहिए। और मृत्यु का स्मरण का मतलब है कि जो भौतिक जगत की जो रियलिटीज़ है, वास्तविकता है, उनको हम सुने रेगुलरली, शास्त्रों के द्वारा पढ़े और भक्तों के माध्यम से सुने हम इस जगत की रियलिटीज़ को। तो इस रियलिटीज़ को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं कितनी डेंजर सिचुएशन में हूँ और मुझे कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। पहले तो ये मतलब रियलाइज़ करें कि मैं बंधा हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे बांध दिया गया है, हाँ, तो फिर वो छूटने के लिए बड़ा गंभीर हो जाएगा, योजना बनाएगा, हाँ। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कि मैं तो बंधा नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो मुझे छूटने की क्यों आवश्यकता है। तो भगवान के भक्तों से सुनेंगे तो क्या होगा, हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, साधु संग निज तत्व अवगत है केंदे बोले ओहे कृष्ण आमित हुया दास, कि वह थे कि आप भक्तों से सुनोगे, क्योंकि भगवान के भक्तों से सुनने मात्र से ही निज तत्व अवगत है। निज तत्व का मतलब है कि मैं कौन हूँ, ये आपको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा, हाँ, वो पता चलेगा। कि क्या पता चलेगा भक्तों से सुनने से, ओ हे कृष्ण आमित हुया दास, कि हे कृष्ण मैं क्या हूँ, आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका गुलाम हूँ, हाँ। तो ये भावना भगवान के भक्तों से सुनेंगे और ये पता चलेगा, ये अनुभव आएगा, तो हम रोएंगे कृष्ण के लिए और कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि ओ हे कृष्ण कृपा करी, शुद्ध भक्ति देव कृष्ण तुम्हें कृपा करी, हे कृष्ण मुझे भक्ति दे दो, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तो इसलिए ये दासत्व को हमें अनुभव करना है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो हमें भगवान का जो नाम है उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और भगवान का नाम जिसकी महिमा इस आज के श्लोक में बताई जा रही है कि ये भगवान का नाम कितना शक्तिशाली और दिव्य है। क्योंकि क्यों क्या दिक्कत है, हम रोज हरि नाम का जाप करते हैं लेकिन प्राथमिकता नहीं देते हैं भगवान के नाम को। प्राथमिकता हमारे लिए लंबी लिस्ट होती है, बाकी एक्टिविटीज़ उसमें प्राथमिकता है, ये करना है, वो करना है, ये चीज वो चीज, लेकिन प्राथमिकता क्या है? भगवान का नाम नहीं है, बल्कि भगवान के भक्तों के लिए जो सर्वोच्च महत्वपूर्ण कार्य है वो भगवान का नाम, और भगवान का नाम उच्चारण या जाप करना ये लाइफ टाइम एक्टिविटी है हमारे लिए, है ना। हम फिजिकली बॉडी में भी खत्म टूट फूट सकती हैं, ये शरीर खराब हो सकता है, हम बेड में लेटे हुए सकते हैं, बीमार हो जाएंगे, तो लेकिन जो हरि नाम है वो हर सिचुएशन में आप ले सकते हैं। फिजिकली में भी आप सेवाज नहीं कर सकते, तो भक्तों के लिए लाइफ टाइम एक्टिविटी है कि ये भगवान का नाम लेना। लेकिन हम क्यों सीरियसली नहीं लेते हैं? क्योंकि हम भगवान के नाम का जो महत्व है, महिमा है, उसको नहीं जानते। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हर एक भक्त को नियमित रूप से रोज भगवान की ग्लोरीज को पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम के महानता को पढ़ना चाहिए। और ऐसा पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम रिमाइंड होगा हमें, और हम ये अनुभव करेंगे कि भगवान का जो नाम है वो मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, इस श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग है ये जगत में, हम भगवान से पहली बार मिलते हैं किसी चीज़ के द्वारा, तो वो किस कौन सी चीज़ है? भगवान का नाम है, जिसके माध्यम से हमारे पहला मीटिंग होता है भगवान से। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में शायद आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम चिंतामणि, नाम कैसे है? चिंतामणि है, टच स्टोन है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, चैतन्य मतलब ये डेड नहीं है भगवान का नाम, वो क्या है? चेतन है भगवान का, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, तो भगवान का नाम स्वयं भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिना। पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और भगवान अभिन्नत्वात् नाम और नामी, नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नामी मतलब जिसका नाम है, तो इस जगत में तो नाम और नामी में भेद है, लेकिन जो भगवान का नाम है उसमें कोई अंतर नहीं है भगवान में और उसमें। तो इस बात को हम रेगुलर जब सुनते हैं तब हम भगवान के नामों को बड़े ही गंभीरता से लेते हैं, और फिर भगवान के नाम के प्रति हमारा जो अनुराग है वो विकसित होता है। नाम चिंतामणि, लेकिन इस संसार में हमें चिंता लगी रहती है, किस चीज़ की? चिंतामणि। हाँ, चिंतामणि जो वो है, टस्टोन है, लेकिन हमारी चिंता होती है चिंतामणि की होती है, पैसे की चिंता होती है। क्योंकि धन क्या है? हाँ, वो महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं मनी के बारे में, ब्राइटर देन सनशाइन एंड स्वीटर देन हनी कॉल्ड मनी। तो ये मनी क्या है? ब्राइटर देन सनशाइन, इतना सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश है इस जगत में, और स्वीटर देन हनी, और इतना मीठा है ये जो धन है, पैसा है। तो हमें ये चिंता लगी रहती है, लेकिन सनातन गोस्वामी हमारे जो महान आचार्य हैं, और हम बार बार वो टच स्टोन का कथा सुनते हैं, ड्रामा भी होता है फरीदाबाद में उसका काफ़ी बार, तो वो चिंतामणि आप देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी, क्योंकि प्रायोरिटी दी थी उन आचार्यों ने, और जाना था कि नाम का क्या मूल्य है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये नहीं अनुभव करते कि ये मेरा धन है, भगवान का नाम क्या है? ये मेरा असली धन है, इसको हम नहीं स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि बाकी जो भी धन है वो धन नहीं है एक्चुअली, वो एंटेंगलमेंट है, क्या कहते हैं, बंधन है। जो भी चीज़ें हम कह रहे हैं कि ये मेरा एसेट है, संपदा है, वो हमारी संपदा नहीं है, वो हमारा, हमें तो बंधन के लिए तो वो कारण है। लेकिन हमारे आचार्य देखेंगे तो आप वो वर्णन करते हैं भगवान के इन चीज़ों के लिए, और जीवों को स्मरण दिलाते हैं कि आपका धन क्या है। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में रोते हैं, वो कहते हैं कि गोरा पहु ना भजिया मैनो, कि मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ कि गौरांग महाप्रभु के चरण को नहीं मैंने भजन किया, उनके चरणों का भजन नहीं किया। अधने जतन करे धन त्यागिनो, मैंने क्या कर दिया? धन का त्याग कर दिया। कौन सा धन? चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल या भगवान का नाम। और अधने जतन करे, जो धन नहीं है उन चीजों को मैंने इकट्ठा करने में लगा हूं, क्यों नहीं, वो कहते क्यों नहीं मैं मर गया, माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मैंने शरीर छोड़ दिया, जन्म लेने से पहले ही हाँ क्यों नहीं मैं मरा। तो इस प्रकार से दुख ये करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और वो अपने और भजन में कहते हैं गौरांगेरा दुटी पद जार धन संपद, गौरांग महाप्रभु के जो दो चरण कमल हैं वो हमारे ये हैं, धन है। तो ऐसे आचार्यों के जो भजन है या उनके जो रियलाइजेशन है उनको हम सुनते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि वास्तव में हम मैं किसी और चीज के लिए अपना धन मान रहा था, लेकिन वास्तव में मेरा जो धन है प्राण धन कोई और चीज है। इसलिए वो कहते हैं धन मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण, कि मेरे जो धन है नित्यानंद प्रभु है और भक्त के धन है उनके राधा कृष्ण के चरण कमल। तो इस प्रकार से जो वैष्णव आचार्याज हैं और जो वैष्णवाज हैं श्रीमद् भागवतम है और जो महान महान वैष्णवाज है वो हमें बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान का जो नाम है वो हमारा असली धन है। और ये ऐसा धन है कि वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, ये धन हमसे कोई नहीं चुरा सकता, कभी भी नहीं छीन सकता हाँ। लेकिन बाकी धन हम जितना इकट्ठा करते हैं वो चीज़ हमसे चोरी करते हैं, उसके लिए हमें चिंता करनी पड़ती है, उसकी रक्षा के लिए हमें लगना होता है। लेकिन जो भगवान का नाम जो है वो ऐसा धन है कि उसके लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वर्णन करते हैं और आचार्य कि ये जो धन है मुख्य पते जीव पाए कृष्ण प्रेम धन, मुख्य पद का मतलब होता है कि भगवान का नाम का जो मार्ग है कलियुगा में ये मुख्य पथ है। तो इसको कोई व्यक्ति स्वीकार करता है और इसको अपने जीवन में लाता है तो व्यक्ति उसको प्राप्त करता है, भगवान के प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। तो इसलिए इस बात को हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। और लेकिन हमारी दुर्दशा क्या है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने यह हरे कृष्ण महामंत्र लाया है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ से लाया यह हरे कृष्ण महामंत्र, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो केनोता है, कि ये तो महाप्रभु ने गोलोक से लेके आए हैं, तो प्रेम धन है हाँ, लेकिन इसमें कोई मेरा अनुराग नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है हाँ कि मैं इतना निर्लज्ज व्यक्ति हूँ हाँ कि मेरा भगवान के इस नाम में कोई अनुराग नहीं है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया हाँ। भक्ति विनोद ठाकुर दूसरे गीत में कहते हैं हाँ, जीव जागो में आते हैं ना, एने ची औषधि माया नाशी बार लागी हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मागी, कि ये जो हरि नाम ये औषधि है कि जितनी माया के विचार है और भौतिक आसक्ति है हाँ इसको तोड़ना है छोड़ना है तो इस औषधि का पान करना पड़ेगा, इस औषधि को नियमित रूप से हमें लेना होगा। तो इससे क्या होगा, एने ची औषधि माया नाशी बार लागी हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मागी, कि हे जीव आप इस हरे कृष्ण महामंत्र को मांग के ले लो हाँ। तो ये हमारे आचार्य हमें प्रदान करते हैं और ये शिक्षा देते हैं। बल्कि चैतन्य भागवत में आता है कि कलयुग में साधु गुरु पाया दुष्कर हैया, कि कलयुग में साधु और गुरु अच्छे से प्राप्त करना हाँ जो प्रामाणिक साधु गुरु और आचार्य हैं बहुत कठिन है, इतना कठिन है, इतना धोखाधड़ी है कि साधु मिलना मुश्किल है, वैष्णवाद मिलने मुश्किल है, गुरु मिलना मुश्किल है। हाँ मार्केट है गुरु का, तो बाजार है, आप चुन सकते हो और खरीद सकते हो गुरुज को। तो इस प्रकार से ऐसे मार्केट में बहुत कठिन है, इसलिए भगवान चिंता करते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कलियुगे साधु गुरु रूपे हाँ चैतन्य महाप्रभु नदिया में अवतरित होते हैं और वो शिक्षा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं कि वो स्वयं भगवान के नामों को आस्वादन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु नाम रस को आस्वादन करते हैं और साथ साथ उसका वितरण करते हैं। इसलिए जैसे कृष्ण हैं, क्योंकि हम यदि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कहलाते हैं हाँ तो हमें अपना जो धन है वो भगवान का नाम बनाना चाहिए हाँ, भौतिक रूप से हम किसी भी सिचुएशन में हों हाँ, लेकिन भगवान को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं यदि हम उनके नामों का सिंसियरली उच्चारण करते हैं, तभी कृष्ण हमारे हृदय को चुरा सकते हैं अब देखो कृष्ण की ये खासियत है कि वो चोरी करने में एक्सपर्ट है। एक आचार्य है जिन्होंने एक अष्टकम लिख दिया, हाँ, जिसका नाम है चोर आग्रगण्य अष्टकम। अभी चोर आग्रगण्य का मतलब है जो चोरों में सबसे आगे है, आग्रगण्य सबसे प्रमुख है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है चोरों में भी, जो परम है, परम चोर है वो कृष्ण है। तो कृष्ण चोर आग्रगण्य है और वो कई चीजें चोरते हैं। हम लीलाएं सुनते हैं कि वृंदावन में भगवान चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं और फिर गोपियों के वस्त्रों की चोरी करते हैं, फिर पाप हमारे पापों को चुराते हैं भक्तों के। तो इस प्रकार से कृष्ण कई चीजें चोरी करते हैं और भक्तों का हृदय भी चोरी कर लेते हैं। तो लेकिन वही हृदय चोरी करते हैं जो क्या है, क्या होना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन ना, कुछ अच्छा हृदय होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी का भी हृदय कृष्ण चोरी कर ले, नहीं, हाँ उन्हीं का हृदय जिनका हृदय क्या है, साफ और क्लीन है, तो ऐसे लोगों का हृदय कृष्ण चोरी करते हैं। तो इस संसार में एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उसको दंड जरूर मिलता है। मिलता है कि नहीं, ऐसे नहीं है कि चोरी नहीं किया और दंडित नहीं हुआ। तो हम चोरी करते हैं तो उस व्यक्ति को दंड निश्चित रूप से मिलता है। तो कृष्ण जब चोरी करते हैं तो उनको भी दंड दिया जाता है, उनके भक्त दंड देते हैं, बल्कि भगवान उनकी संपदा है जो अकिंचन वित्ताय, कुंती महारानी कहती है पहले स्कंद में, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, कि हे कृष्ण आप तो उनके धन है जिनके पास भौतिक धन नहीं है, भौतिक रूप से जो अकिंचन है, भिखारी है, गरीब है, ऐसे लोगों के आप धन है। तो इस प्रकार से डिवोटीज का जो धन है वो मटेरियली चाहे तो जीरो हो सकते हैं, लेकिन उनका धन क्या होते हैं, कृष्ण होते हैं। कि कृष्ण क्या करते हैं, जब ये इस प्रकार से चोरी करते हैं तो भगवान के भक्त उनको दंड देते हैं। और किस प्रकार से दंड देते हैं, कि कृष्ण को वो अपने हृदय में ले जाते हैं। भगवान को क्या करते हैं, हृदय रूपी जो जेल है, ये जेल से तो आपको कभी आपको बेल मिल सकती है। बेल का मतलब क्या होता है, आपको छूट सकते हो बीच में हो कुछ देकर, जब आपको पुलिस ले जाते हैं जेल में तो आपको बेल देकर आप छुड़ा भी सकते हैं। लेकिन भक्तों का इतना प्रेम होता है, शुद्ध भावे बांधे ब्रजेश्वरी मदर यशोदा कार्तिक आ रहा है, कि इतना अनुराग था, हर समय भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, तो मदर यशोदा ने भी कृष्ण को बांध दिया। और उसी प्रकार जो भक्त हैं वो बांधते हैं कृष्ण को, पकड़ते हैं और अपने हृदय रूपी जेल में डालते हैं, और जेल में डालते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण कभी वहाँ से छूट नहीं सकते हैं। हाँ कृष्ण हमें स्टे फॉर एवर, भगवान का आप अभी हमेशा के लिए बंदी हो जाइए, आपकी कभी छुट्टी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त उनको पनिशमेंट देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान का जो नाम है उसको अपना धन बना लिया है, प्रेम धन। तो भगवान का नाम ही वो प्रेम धन हमें प्रदान कर सकता है, और इसलिए शास्त्र कहते हैं अभिन्नत्वात् नाम नामिना, कि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो कई कथाएं आती हैं, जैसे कि एक सन्यासी थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी किसी पुराण से, भगवान राम से संबंधित, कि एक बार नारद जी आए और उन्होंने चाहा कि अभी लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, हाँ तो मैं जाता हूँ लोगों को थोड़ा प्रचार करता हूँ कि भगवान का नामों का उच्चारण करिए। तो वो आते हैं तो एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि तुम जरा भगवान के नामों का उच्चारण करो, तो कहते हैं नारद जी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इतना बिजी कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन एक समय मेरे पास होता है, मैं जब बाथरूम जाता हूँ उस समय मेरे पास समय होता है कि उस समय मैं नाम ले सकता हूँ, वही समय है, बाकी समय में तो मैं फुल्ली पैक्ड हूँ, बिजी हूँ। तो नारद जी कहते ठीक है, तो आप क्या करो, नाम ले लो भगवान का, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, loudly.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
तो वो भगवान के राम नाम का उच्चारण करने लगता है और अपने क्योंकि तो फिर उस समय जहाँ भगवान का नाम भगवान राम का नाम का उच्चारण होता है वहाँ क्या आ जाते हैं हनुमान जी आ जाते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि हनुमान आ गए और देखा कि मेरे प्रभु का नाम ऐसे अनुकूल समय में ले रहा है तो उनको मारने लगे किक लगाने लगे उनको। तो वो व्यक्ति इतना सहनशील था कि उसने सहन किया हाँ लेकिन वो मुख से भगवान का नाम लेते ही जा रहा है भगवान राम का नाम। तो हनुमान जी को देखा हनुमान ने कि अरे मैं पावरलेस हो रहा हूँ शक्तिहीन हो रहा हूँ हाँ शक्ति मेरी कम होते जा रही है। तो इनको लगा कि कुछ चिंता का विषय है मुझे मेरे प्रभु राम जी के पास जाना होगा। तो भगवान राम के पास जाते अयोध्या में तो जब वहाँ जा ही रहे थे राम जी के पास तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया कि हनुमान जी आपका प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान राम अभी अपने शैया पर लेटे हुए हैं और वो बहुत बीमार हैं। तो भगवान राम बीमार है कि मुझे एंट्री नहीं हो सकती मैं तो उनका सेवक हूँ। आप देखिए हाँ सेवक की हम बात करते हैं तो वर्णन आता है हाँ कि हनुमान के समान अलर्ट जैसे कि ब्रह्मचारी का एक गुण होता है भागवतम में सेवन कैंटों में आता है कि ब्रह्मचारी को भक्त कैसे होना चाहिए अपने गुरु के सामने। ब्रह्मचारी की एक महत्वपूर्ण गुण होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मतलब है वो गुरु के लिए हर समय गुरु के सामने ऐसे फोल्डेड हैंड्स मतलब ऐसे मुद्रा में रहें। क्यों? और हर समय जहां आचार्य वॉक कर रहे हैं गुरु जहां बैठ रहे हैं गुरु चल रहे हैं उनके पीछे पीछे हर समय अलर्ट रहें और किसी भी समय और किसी भी प्रकार की सेवा हाँ गुरु के लिए करने के लिए उसको तत्पर होना चाहिए। हाँ इसलिए कहते हैं कि रात को सो भी रहा है ब्रह्मचारी हाँ तो उसको गुरु कभी भी बुला सकते हैं। तो उसकी निद्रा कैसे होनी चाहिए? श्वान निद्रा। श्वान निद्रा का मतलब है कुत्ते के समान सोना चाहिए। हाँ चाणक्य पंडित पांच बातें बताते हैं कि अल्प भोजनम हाँ व्यक्ति का भोजन अल्प होना चाहिए। हाँ काक स्नानम कौवे के समान स्नान होना चाहिए मतलब इन चीज़ों में समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। स्नान करना कपड़े धोना जितना जल्द हो सके बाकी समय ज़्यादा ज़्यादा सेवा और भगवान की कार्यकलाप में लगाना चाहिए। तो कहते काक स्नानम बक ध्यानम दूसरा कहते बक ध्यानम मतलब मेडिटेशन कैसा हो जैसा बगुला जैसे मछली पर ध्यान करता है उसी प्रकार उसका जो ध्यान है गुरु की ऑर्डर्स पर होना चाहिए गुरु की जो आज्ञा है उन पर होना चाहिए। काक स्नानम बक ध्यानम श्वान निद्रा कुत्ते के समान निद्रा होनी चाहिए ताकि वो अलर्ट रहे हर समय गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए। और एक गुण है कि विदेश गमनम का मतलब है विदेश जाना चाहिए। विदेश जाने का मतलब है अपने घर में नहीं रहना चाहिए उसको किसके घर में आना चाहिए गुरु के घर में आना चाहिए। तो विदेश गमनम का अर्थ यह है विदेश नहीं कि किसी और देश में चले जाए अपने घर में ना रहें वो गुरु के घर में आ जाए। हाँ तो इस प्रकार से इस बात का वर्णन करते हैं जो आचार्य हैं। और कितने हो गए? पांच हो गए। काक स्नानम बक ध्यानम अल्प भोजनम विदेश गमनम श्वादन श्वान निद्रा पांच हो गए। हाँ तो पांच चीज़ें वो बताते हैं सेवक के लिए। तो इस प्रकार से अलर्ट रहते हैं। तो हनुमान जी भी इसी प्रकार से हैं। हनुमान जी देखेंगे आप बिल्कुल सेवा की मुद्रा में हैं यानी कि वो चेयर में बैठे बिल्कुल लेटे हुए और उनके स्वामी राम वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं हर समय अलर्ट ये है सेवक एक्चुअली हाँ सेवा भावना। तो जब हनुमान जी का प्रवेश नहीं हो रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने बिल्कुल आई किया था कि आपका प्रवेश वर्जित है नो एंट्री। तो लेकिन हनुमान जी तो इनका उनके पास इतना पावर्स है कि वो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े से बड़ा भी हो सकते हैं। तो वो जंप लगा के चले जाते छोटे होकर अंदर देखते कि मेरे प्रभु लेटे हुए हैं बेड पर और आवाज़ें कर रहे हैं हाँ कष्ट में है, तो भगवान राम आवाज कर रहे थे, ओ ना ऐसे जैसे कोई बीमार है ना, लग जाता है बॉडी में किसी को मारा, तो भगवान राम ऐसे चिल्ला रहे थे, चिल्ला तो नहीं रहे थे लेकिन आवाजें कर रहे थे। तो हनुमान देखा कि कोई तो आया है, तो कहते राम कहते कौन है, तो कहते आपका सेवक हूँ मैं हनुमान। आप कैसे सेवक हो, आप तो मुझे मारते हो, किक लगाते हो, आप कैसे मेरे सेवक हो सकते हैं। कहते प्रभु मैंने तो मारा नहीं है, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को मारा है जरूर, जो आपका जो पवित्र नाम है वो ऐसी सिचुएशन में ले रहा था। तो भगवान राम कहते हैं कि वो अज्ञानता में है, हाँ जहाँ मेरा नाम का उच्चारण होता है, हाँ मेरा नाम और मैं अभिन्न हो, तो इस शिक्षा के लिए ये शिक्षा देने के लिए कि मैं अपने नाम से अभिन्न हूँ, हनुमान जी इसको ये शिक्षा देने के लिए ये लीला भगवान राम करते हैं और फिर हनुमान जी का आलिंगन करते हैं। तो इस प्रकार से ये किसी पुराण में ये स्टोरी आती है। तो इस प्रकार से ऐसी कई घटनाएं हैं और कई ऐसे आचार्यों का मत हैं, रियलाइजेशंस हैं, और शास्त्र भी इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और अभिन्न भी है और शक्तिशाली है। भगवान का नाम क्या है, शक्तिशाली है, तो पावरफुल है, इतनी उसमें शक्ति है। हाँ क्या शक्ति है, हम कई उदाहरण सुनते हैं, भगवान राम है, पहले ये स्मरण आता है भगवान का नाम, कि भगवान राम ने जब ब्रिज बनाना चाहा लंका जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो सेना है उन्होंने पत्थरों के ऊपर भगवान का नाम लिख दिया और वो पत्थर तैरने लगे। इस प्रकार से ऐसी कई घटना है कि इतने शक्तिशाली हैं, और भी कुछ स्टोरीज आती हैं पुराणों में। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है, तो हमारे जीवन का वो मूल्यवान धन है, और उस धन के अर्जन करने के लिए हमें चिंतित होना चाहिए। जैसे हम चिंतित होते हैं भौतिक धन को प्राप्त करने के लिए, तो उसी प्रकार भक्त को भी ये आध्यात्मिक धन प्राप्त करने के लिए चिंतित होना चाहिए, अर्जित करने के लिए, अन्यथा फिर हम क्या है, प्रिटेंडर है। प्रिटेंडर का मतलब होता है ढोंगी है या दिखावा कर रहे हैं, हाँ तो दिखावे से ज़्यादा अच्छा है, हाँ भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं दिखावा या ढोंग करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो ईमानदारी से कोई स्वीपर रोड में ये कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है और उससे कुछ अर्जन कर रहा है। प्रभुपाद भी नहीं पसंद करते थे कि कोई उनके जो अनुयायी हैं वो केवल दिखावा करे। जैसे कि एक बात है, प्रभुपाद वृंदावन में अपने प्रभुपाद हाउस में रहते थे, तो प्रभुपाद रेगुलर जब भी बाहर निकलते थे तो काफ़ी डिवोटीज ना इकट्ठा हो जाते थे उनको रिसीव करने के लिए। तो एक भक्त जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया था उसका बड़ा अनुराग था, वो क्या करता था, जैसे प्रभुपाद दिखते थे और आपने एक नोटबुक बना ली थी उसमें कई सारे श्लोका लिखे थे, प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद हाउस से बाहर एक स्टेप डालते थे एक कोने में खड़ा हो जाता था सामने, आप देखिए वहाँ गेट है प्रभुपाद के साथ, उस गेट पे खड़ा होता था और श्लोका उच्चारण करने लगता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ऐसे एक हफ्ता हो गया, प्रभुपाद जब भी निकलते थे उस समय वो चांट करता था। तो प्रभुपाद ने देखा ये फुल्ली ये कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो प्रभुपाद ने एक दिन चांट कर रहा था रुका है, मैंने कहा स्टॉप करो, इससे अच्छा है कि अभी बारिश हुई है और मेरे इस रूम के सामने सारा पानी हुआ है, झाड़ू ले लो और उसको सफाई कर दो। इस प्रकार से हमें एक जो भगवान का नाम है वो एक धन स्वीकार करना चाहिए, और केवल हम ये ना करें एक प्रकार से हम अपने आप को धोखा ना दें। हम दूसरों को धोखा देते हैं तो सबसे पहले अपने आप को हम धोखा देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अपने अनुयायन से ये शिक्षा चाहते थे कि वो दिखावा ना करे या ढोंग ना करे, और वो ये अनुभव करे कि मेरा जो हरि नाम है वो मेरा असली धन है, और उस धन के लिए उसको अर्जन करने के लिए उसको लगना चाहिए, और ये ऐसा धन है कि ये बहुत ही स्वीट है। जैसे हम उसकी स्वीटर देन हनी की बात कर रहे थे, धन, तो ये हरे नाम क्या है, बहुत मीठा है। एक बिल मंगल ठाकुर का एक बुक आता है गोविंद दामोदर स्तोत्र आता है, तो स्तोत्र में जो बिल्व मंगल ठाकुर हैं वो प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? अपनी जिह्वा से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, जिह्वे सदैवं भज सुंदरानी नामानि कृष्णस्य मनोहरानि, कि हे मेरी जिह्वा, तुम सदा क्या करो, भगवान कृष्णचंद्र के, गोविंद के जो इतने नाम हैं, सुंदर सुंदर नाम हैं और मधुर मधुर नाम हैं, गोविंद, दामोदर और माधव, इस प्रकार के जो नाम हैं उनको क्या करो, उनका आस्वादन करो, क्योंकि ये नाम क्या करते हैं, समस्त भक्तार्थ विनाशनानी गोविंद दामोदर माधवेति, कि ये जो नाम है वो सारे दुखों को विनाश कर देते हैं, हाँ, तो इसलिए क्या करो तुम इनका उच्चारण करो। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं चाहता भगवान के नामों का बड़े सरलता से उच्चारण करना। और वो और एक उनको लालच देते हैं, हाँ, जिह्वा को, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, जिह्वे रसज्ञ, जिह्वे रसज्ञ मधुर प्रियात्वम, वो कहते हैं मेरी जिह्वा हमें हेल्प चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान के नाम में अनुराग बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम प्रार्थनाएं करें, प्रेयर्स, हाँ, नहीं तो हमारा चैंटिंग कैसे होता है, वो होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि पैरट को क्या कहते हैं, तोते के समान हम जाप करते हैं, मशीन जा रही है बिल्कुल कितनी स्पीड, 190 के स्पीड से, हाँ, लेकिन फीलिंग्स नहीं है चैंटिंग में, क्या है, केवल चांट कर रहे हैं हम, लेकिन चांटिंग ज़्यादा शक्तिशाली है जब हम साथ साथ फीलिंग डालते हैं भगवान के नाम में। तो इसलिए ये फीलिंग्स तभी विकसित होती हैं जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो प्रेयर्स करें, क्योंकि प्रेयर बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्तों के लिए। भक्तों के पास कोई शस्त्र है, हाँ, वेपन है, हाँ, वो क्या है, प्रार्थना है उनके पास, और इस प्रार्थना के द्वारा हम हर चीज़ को आध्यात्मिक जीवन में, हर ऑब्स्टेकल्स जो बाधाएं हैं उनको पार कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के। तो इसलिए वो जिह्वा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिह्वा क्या करती है, सहायता करती है, भगवान का नाम लेती है। हाँ, जिह्वा दो काम करती है, स्वीट्स खाती है और स्वीट बोलती है। तो वो कहते हैं कि जिह्वे रसज्ञ मधुर प्रियत्वम, की है मेरी जिह्वा, आप तो, आपको बहुत प्रिय है, क्या चीज प्रिय है, स्वीट खाना बहुत प्रिय है, मधुर प्रियत्वम, आपको स्वीट स्वीट चीजें आस्वादन करना बहुत अच्छा लगता है। सत्यम हितम त्वाम परमम वदामि, लेकिन देखो मैं आपका हितैषी हूँ और मैं आपकी हित के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जैसे हम किसी को बता दें कि मैं आपका हितैषी हूँ, भगवान भी कहते सुहृद हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, तो ये कहते हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ और आप सुनो, आपकी भले की बात कर रहा हूँ मैं, वो बात क्या है, आवरण यथा मधुराक्षरानी गोविंद दामोदर माधवेति, कि मैं ये बात बताता हूँ कि भगवान के ये जो नाम है ये बहुत मीठे हैं। हाँ, भगवान के नाम क्या है, बहुत मीठे हैं, स्वीट हैं, उनको क्या करो, आप आस्वादन करो और उनका उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर जिह्वा के लिए कम से कम 15-20 श्लोकों के द्वारा प्रार्थना की है उन्होंने, कि हे जिह्वा देखो, हाँ, सुख में दुख में, शरीर छोड़ने के अंत समय में भी, हाँ, ये एक नाम ऐसी चीज है जो ली जा सकती है। हाँ, आपसे मैं भिक्षा मांग रहा हूँ कि जब यमराज आएंगे तो कृपा करके उस समय क्या करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से ये जो भावना है वो हमें विकसित करनी होगी और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझना होगा, और बिना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझे कृष्ण की ओर हम उन्मुख नहीं हो सकते। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ, वो एक बार वर्णन आता है उनके जीवन चरित्र में कि एक बार एक गोस्वामी आता है और वो गौर गौर नाम का उच्चारण करता है, कीर्तन करता है और भागवतम की कथाएं करता है, तो उनका वो शिष्य जाता है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, उनका अनुयायी, और वो कहता है कि देखिए गोस्वामी आए हैं, हाँ एक वो गौर नाम का उच्चारण कर रहे हैं और वो शास्त्रों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ तो जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं वो गौर गौर नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है, रूपी रूपी कह रहा है। हाँ कहते तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है, शुद्ध भक्त सुन लेते हैं उसके पीछे क्या मनोभाव है। तो कहते हैं कि वो गोदास है, वो गोस्वामी लिटरेचर क्या एक्सप्लेन करेगा श्रीमद् भागवतम को और भगवान की चीज़ों को। इसलिए वो अपने जो अनुयायी थे उनको बहुत डांटते थे और एक श्लोक हमेशा उद्धृत करते थे। वो कहते देख गौरा रामी मुखे बोले ले नाही चले। हाँ कई बार हम भावुक हो जाते हैं। हाँ वो कहते हैं, कोई कहता है कि गौरा रामी मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, गौरा रामी मुखे बोले ले नहीं चले। केवल मुख से बोलना इनफ नहीं है कि मैं महाप्रभु का हूँ, गौरांग महाप्रभु का हूँ। तो वो कहते थे गौरार आचार गौरार विचार लय ले फल फले, कि गौरांग के महाप्रभु के आचरण को समझना होगा, उनके लीलाओं को समझना होगा और उनके विचार उनके सिद्धांत को समझना होगा, उन्होंने जो अपने अनुयायियों को दिए हैं। और ऐसा करेंगे तभी ये जो फल है कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है वो हमारे हृदय में विकसित हो सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो हरि नाम है जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और जिसको हमें गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हरि नाम चांटी करना मीन्स इसको चैतन्य भागवत में कहते हैं आत्मार्क्रंदन। आत्मार्क्रंदन आत्मार्क्रंदन मीन्स आत्मा का क्रंदन को क्या क्राइंग रोना, हाँ आत्मा का रोना है ये। चैंटिंग मीन्स क्या है, आत्मा का रोना है, आत्मा इज क्राइंग। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि चैंटिंग ऐसा होना चाहिए जैसे कि छोटा बालक अपनी माँ से अलग है और वो माँ को पुकारता है। तो इस प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं। लेकिन हमारा नाम क्या होता है, एक होता है असली नाम और एक होता है नकली नाम। आप देखिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि माता पिता उनको मार्केट में ले जाते हैं तो वह बंदूक होती है कि नहीं, तो बंदूक लेके दे देते हैं बच्चे को और जब बच्चे आवाज़ आता है तो बड़ा खुश होता है, बल्कि केवल आवाज़ आता है लेकिन उसमें कोई गोलियाँ नहीं होती। तो वैसे हमारा हरि नाम आवाज़ तो आता है हाँ लेकिन कोई ये नहीं है। तो असली नाम एक्चुअली शुद्ध नाम है, लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ के लिए अनुराग या तैयारी करनी चाहिए। और ये डिवोटी का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ये है अंग है भक्तिमय जीवन का। हाँ तो ये ऐसा जो हरि नाम है, तो ये हरि नाम इतना मीठा है जिसका वर्णन कई शास्त्र करते हैं। श्रीमती राधा रानी भी एक श्लोक में कहती हैं, चंडीदास जो चैतन्य महाप्रभु जिनकी कथा है जिनके पोयम सुनते थे, तो चंडीदास श्रीमती राधा रानी के मूड को आगे रखते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं और वो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के नाम के प्रति कितना अनुराग था। हाँ श्रीमती राधा रानी एक ही नाम उच्चारण करती है, इसलिए श्रीमती राधा रानी के स्वभाव को कृष्णमयी कहा जाता है। कृष्ण जार भीतर बाहिर है इसलिए उनको कृष्णमयी कहते हैं, कि इतनी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है कि कृष्ण उनके बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर क्यों, बाहर कैसे हैं, बाहर आप देखेंगे श्रीमती राधा रानी के जो प्रिय वस्त्र हैं जो कलर धारण करती है वो नील है, श्याम कलर है ना बादलों के समान, तो बाहर से भी वो कृष्ण के इसमें होती है, मग्न होती है। और कृष्ण क्यों पीताम्बर धारण करते हैं, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी से राधा भावना भावित है, है ना। इसलिए वो तो श्रीमती राधा रानी हमें शिक्षा देती हैं कि कृष्ण नाम का हमें गंभीरता से सहारा लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि है सखी अपने सहेलियों को कहती हैं सखियों को कि आप कृष्ण का नाम क्यों सुनाया मुझे आज। हाँ मतलब वहाँ बताती है कि कितना मधुर है भगवान का नाम है, स्वीट है, लेकिन हमें स्वीट नहीं महसूस होता। रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में कहते हैं कि हमें तो अभी जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, इसलिए शुगर भी हमें कड़वी लगने लगती है, लेकिन उसी शुगर को हम खाते हैं तो जॉन्डिस हमारा दूर हो जाता है और हरिनाम या जो शुगर का जो स्वीटनेस है वह हम अनुभव करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहते कि हे सखी, आज आपने क्यों मुझे कृष्ण का ये श्याम का नाम क्यों सुनाया है? क्योंकि ये नाम जैसे ही मेरे हृदय में चला जाता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ भगवान के नाम के लिए। तो कहती है, ना जाने कते का मधु श्याम नामे आछे गो, कि ना जाने कते का मधु, नहीं जानती कि कितना मधु को क्या कहते हैं, हनी, हाँ, कितना स्वीट, श्याम नामे आछे गो, कितना स्वीट है ये कृष्ण का नाम है। वदन छाड़ते ना ही पारे, वो कहते मेरा मुख छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण है कि भगवान का नाम कितना सुंदर, और चैतन्य महाप्रभु ने भी वही सेम भाव को प्रकट किया जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वो चर्चा करते हैं, आदि लीला में आता है कि कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार उपजय भाव, ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जो भी सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र का चांत करेगा उसके अंदर कृष्ण के प्रति अनुराग होगा। चैतन्य शिक्षाष्ट कम में आता है कि अय नंद तनुज किंकरम पतितम, नहीं दूसरा श्लोक कौन सा, युगायतम निमेश न चक्षुषा प्रावृषायतम, कि हरि नाम के लक्षण क्या है भारी रूप से कि नयनम गलदश उधारया, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान से विरह महसूस होता है डे बाय डे, भक्त को लगता है जैसे हमें अभी कई चीज़ों से विरह होता है, प्रसाद नहीं मिला तो विरह होता है। अब उस दिन महाराज से मैं मिल रहा था, कल बुलाया था, तो महाराज कहते हैं, सेवा से बात हो रही थी और एक दो डिवोटीज की, महाराज कहते हैं कि जो सिंसियर डिवोटी होता है उसके पास सेवाएं होती हैं, ही इज एंगेज फुल्ली एंगेज, और बाकी हमें कितना ये होता है, महाराज ने कहा प्रसादम के लिए कितना हम फाइट करते हैं, महाराज ने बोला प्रसादम के लिए कितना फाइट करते हैं प्रसाद प्राप्ति के लिए, तो वैसे ही फाइट हमें सेवा के लिए करने चाहिए, महाराज कहते हैं कि जो डिवोटी है वो सेवा से भरा होता है और हमेशा कृष्ण की सेवा में उन्मुख होता है। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान नाम है जिसका हमें उच्चारण करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु ने यही बात बोली है। महाप्रभु क्या कहते हैं, और गुरु भी खुश होते हैं जब देखते हैं शिष्य का अनुराग भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति बढ़ रहा है, भगवान का नाम स्पिरिचुअली वो उन्नत हो रहा है, तो देखते हैं। इसलिए नाम क्या है, ये चैतन्य चरितामृत में कहते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु को चैतन्य महाप्रभु, कि वा मंत्र दिला गोसाई कि वा तारबल, जपीते जपीते मंत्र करिल पागल, वो कहते कि हे गोसाई, हे मेरे गुरुदेव, आपने ये मंत्र कैसे दिया है, इसको जितना अधिक जाप करते जा रहा हूँ उतना ही अधिक ये हरे कृष्ण महामंत्र मुझे क्या बना रहा है, पागल बना रहा है। तो आप समझ सकते कि कितना शक्तिशाली है, लेकिन हमारे साथ नहीं होता हम पागल हो जाते हैं फीडबैक छोड़ के भागते हैं है ना, तो ये हमारी सिचुएशन है। प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे, किसी की बिड़बैग लटकते हुए नजर आती थी टेम्पल हॉल में या कहाँ, तो प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कहाँ थे, वृंदावन में कहाँ, देखा कि किसी की बिड़बैग लटक रही थी और प्रभुपाद ने सुबह से देखी थी और दोपहर से गए थे, वो उसी स्थान में लटकी है। प्रभुपाद किसका बिड़बैग रो रहा है, उस बिड़बैग इज क्राइंग प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद, तो पता चला कि किसी और सीनियर डिवोटीज का था प्रभुपाद ने बुलाया और उनको बहुत डांटा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान नाम वास्तव में हमारा एकमात्र जीवन लक्ष्य है, और डे बाय डे भगवान नाम की ग्लोरीज को सुनना चाहिए, भक्तों के साथ चर्चा करनी चाहिए और भक्तों के साथ बैठकर हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, तभी ये हरि नाम के प्रति हमारा अनुराग विकसित हो सकता है। और ये अनुराग कैसे डेवलप होगा, भक्ति सिद्धांत महाराज आप अमृतवाणी पढ़ते हैं तो चैंटिंग सेक्शन में आता है, काफ़ी बहुत अच्छे कोट्स हैं वहाँ। तो कहते हैं कि अनुराग कैसे, कई बार हम आलसी हो जाते हैं, लेजीनेस आता है ना, तो कहते हैं कि संख्या पूर्वक नाम आप फिक्स रहो करने में, तो फिर ये लेजीनेस चला जाएगा। और ये टेस्ट हरि नाम के प्रति विकसित कर सकते हो यदि आप क्या करते हो, गुरु और वैष्णव को सर्व करते हो सिंसियरली। और शास्त्रों का अध्ययन करते हो अच्छी तरह से, तो तब फिर धीरे धीरे भगवान नाम के प्रति हमारा अनुराग विकसित होगा और मठ वासियों की सेवा करो, ऐसे कहते थे मठ वासी, जो डिवोटीज हैं मठ में उनकी सेवा में लगो, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, हरे नाम की ग्लोरीज का प्रचार कर रहे हैं। तो बड़ा क्लियरली भक्ति सिद्धांत महाराज काफ़ी लिखते हैं, तो नियमित रूप से पढ़ेंगे तब हम भगवान के जो पवित्र नाम हैं उनकी महिमा को जान सकते हैं और फिर ये अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में मेरा जो धन है वो भगवान का नाम है और मेरा कार्य ये होना चाहिए कि भगवान के नामों का अधिक अधिक उच्चारण करूँ और भगवान नाम को अधिक अधिक ये करूँ, अर्जन करूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?
हाँ हाँ सर, महाराज कह रहे थे कि जैसे डिवोटीज हैं शाम के लिए फाइट करते हैं, जैसे सेवा के लिए फाइट
है। एक्चुअली सेवा का मतलब जैसे हमने कहा ना, वो सेवा ही नहीं कर सकता, जैसे वो श्रवण कीर्तन मनन निधि ध्यासनम और फिर सेवा आती है, तो वो व्यक्ति हाँ, क्योंकि हरि नाम को सर्व करना एक महत्वपूर्ण सेवा है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते उस पैराग्राफ में कि हरि नाम का उच्चारण करना ही एक महत्वपूर्ण सेवा है, लेकिन उसके साथ साथ तो कैसा पता चलेगा कि मेरा हरि नाम अच्छा हो रहा है? हाँ, तो कहते कि ईगर टू सर्व, चांटिंग करने के बाद हाँ, उसको चाहे वो बॉडीली वीक हो, बेड पर पड़ा है, लेकिन कृष्ण सेवा के लिए उसके हृदय में तन्मयता होगी, वो कृष्ण को किसी ना किसी प्रकार से सर्व करना चाहेगा। यह है रिजल्ट चांटिंग का कि ईगर टू सर्व। हम कहते ना कि चांटिंग कैसे अच्छी हो रही है, तो यह है कि चाहे वो बॉडीली वीक है, बेड पर लेटा है, बॉडी उसका काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में वो अनुराग है, वो कृष्ण को सर्व करना चाहता है। जैसे वृंदावन के डिवोटीज हैं, हाँ वो क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, सर्व करते हैं। गोपीज हैं, गोल बाल हैं, मदर यशोदा हैं, नंद महाराज हैं, किसी ना किसी प्रकार से हर समय कोई कुकिंग कर रहा है कृष्ण के लिए, हाँ हाँ कोई कितनी सेवा करते हैं वृंदावन में, कृष्णा बुक में हम पढ़ सकते हैं, ये रिजल्ट है सेवा के साथ साथ। तभी सेवा हो सकती है अच्छी, हाँ जब प्रॉपरली वो मॉर्निंग अपना चैंटिंग करें भक्तों के संग में।
जैसे महाराज होते हैं, महाराज को 24 घंटे एंगेज रहते हैं किसी ना किसी एक्टिविटीज में, और काफ़ी स्फूर्ति उनकी हमें बनी रहती है, हमेशा दिखाई देती है।
हाँ हाँ,
हमेशा
एकदम से, ये इसलिए है उत्साह। तो हाँ,
हम लोग जो सोचते हैं जिसमें हम कर रहे
हैं,
सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ समय वो बहुत ज़्यादा बॉडी में से पेन शुरू हो जाता है, बहुत वीकनेस आने लगती है, बहुत थकान होती है, ऐसे समय में क्या?
एक्चुअली एक तो है हेल्थ का ध्यान रखें ना, हाँ क्या है वो सीक्वेंस, हेल्थ साधना सर्विस ऐसे ना समथिंग, तीन का सीक्वेंस आता है, हाँ हेल्थ साधना सर्विस ऐसे, यार साधना हेल्थ सर्विस ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है, हाँ हेल्थ साधना सर्विस। तो डिवोटी का ये कॉन्शियसनेस होता है अपने शरीर की देखभाल, किस लिए कि मैं और अच्छी तरह से कृष्ण और गुरु को सर्व करूँ। हम सोने भी जाते हैं उसी से 24 आवर्स सर्व सेवा की बात करते हैं, तो जो वैष्णवा सर्व करते हैं निद्रा में भी भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि ये बॉडी कृष्ण की सेवा के लिए है, इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो ताकि और फुर्ती से वो कृष्ण की सेवा करे। रेस्ट किस लिए कर रहा हो, और उत्साह के साथ कृष्ण की सेवा के लिए, तो ये उत्साह आता है एक्चुअली हरि नाम लेने से। जैसे अभी हम वेंसडे गए थे सेंट्रल मार्केट में हरि नाम करने, तो रिसेंटली महाविष्णु महाराज आए थे मंदिर, हमने रिक्वेस्ट की कि महाराज हम हरि नाम जाते हैं वेंसडे, आप आ सकते हैं क्या? तो महाराज ने कहा हाँ, तो बल्कि महाराज का इतने सालों से हैं हाँ, तो इतना अनुराग है भगवान नाम के प्रति, तो हमने उनके लिए कार भी अरेंज की और हम बाकी सारे भक्त संकीर्तन बस में जा रहे थे, तो मैंने कहा महाराज आप प्लीज़ कार में बैठिए, और तो महाराज ने कहा नहीं, तो मैं कार में बैठूंगा तो हरि नाम नहीं कर पाऊंगा भक्तों के साथ, क्योंकि मंदिर से लाजपत नगर मार्केट सेंट्रल मार्केट हमें जाना था, तो महाराज और एक दो बैठे भक्त बैठ सकते हैं डिवोटी, एक और दो डिवोटी और महाराज, तो एकदम मैं मिस करूंगा ये अपॉर्चुनिटी भगवान का हरि नाम लेना, तो मैं नहीं, मैं बस में ही बैठना चाहता हूँ और भक्तों के साथ
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो हम सेंट्रल मार्केट में गए तो वहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा जो माया देवी का प्रभाव है, वहाँ सारे लोग फुल्ली एंगेज्ड हैं, हाँ, परचेज और क्या है सेलिंग और परचेज उसमें, तो इतनी भीड़ भी थी लोगों की और कई नाना प्रकार के लोग अपने कार्य में मस्त हैं। तो लेकिन महाराज में इतना उत्साह था, हम बस हम 10-12 डिवोटीज थे हम और महाराज थे, तो महाराज का वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट था और साउंड सिस्टम के साथ हम पूरे 1.5-2 घंटा हमने हरिनाम किया। तो महाराज का इतना उत्साह, बल्कि हमारे अंदर हम यंग शरीर से हम यंग थे सारे भक्त, हमें थकान महसूस हो रही थी और हमें लग रहा था कि कब हरिनाम खत्म हो जाता है लेकिन महाराज तो ये, हाँ ये क्या है, ये एंथुजियाज्म, ये जो शक्ति है ये हरिनाम से, इतना अनुराग हरिनाम के प्रति। तो महाराज ने लीड किया और महाराज नाचते भी रहे बहुत ज़्यादा, हाँ हमारे साथ। तो महाराज फिर बीच बीच में सेंट्रल में उस मार्केट में कई शॉप्स में घुस जाते थे, हाँ गाते गाते अपनों बजाते अंदर घुस जाते थे शॉप में, सारे डिवोटी शॉप में चले जाते थे, सारे शॉप का मालिक वगैरह सब खड़े हो जाते थे और किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन शांत हो जाते थे और डिवोटी जोरदार फिर कीर्तन करते, फिर हम बाहर आ जाते थे उस दुकान से और फिर ऐसे कीर्तन करते करते काफ़ी स्थानों में। तो हम आने के बाद मुझे सोच रहा था और फिर हम बस से आए तभी भी महाराज ने कीर्तन ही रखा कंटिन्यू, और फिर बस एक सिग्नल में रुकी तो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था, महाराज कहते क्या छीन तो उसको पकड़ लो, उसको ले आओ गाड़ी में किसी प्रकार से, मैंने एक भक्त को भेजा तो उस व्यक्ति को खींच रहे थे कि आ जाओ हमारे साथ तो वो नहीं आ रहा था, तो महाराज कहते नहीं आ रहा था तो प्रसाद दे दो। तो हम जाने से पहले कुछ प्रसाद डिवोटीज को बांटा था, उन्होंने कहा प्रसाद वहाँ नहीं था, तो महाराज कहते पुस्तक दे दो, बुक दे दो। तो देखो बुक्स भी ले गया भक्त, कृष्णा बुक भगवद गीता, तो बुक भी नहीं ले रहा था, तो फिर महाराज कहते उसको उठा के लाओ महाराज कहते कल न्यूज़पेपर में हेडलाइन आएगी कि कृष्णा हरे कृष्णा वाले लोगों ने एक व्यक्ति का हरण कर दिया अपहरण और फिर आए और महाराज कीर्तन करते जा रहे थे और उतरे तो हम नीचे रोड से ऊपर तक, महाराज को गेस्ट हाउस में जाना था तो वहाँ तक कीर्तन करते हुए गए जोरदार। तो मतलब हम सोच रहे थे कि कितना उनका जो अनुराग भगवान के नामों के प्रति है, क्योंकि हरे नाम ही वो एंथुजियाज्म और शक्ति देता है, तो हम समझ सकते हैं कि इतने साल सेम महामंत्रा चांट कर रहे हैं वही मंत्र है फिर भी कोई थकान नहीं है, आनंद क्या हो रहा है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का वर्धन होते जा रहा है भगवान के नामों का। तो ये उसका एक गुण है कि इतना सिंसियरली वो प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं और हरि नाम को ले रहे हैं। तो उस दिन प्रसादम हॉल में भी हुई थी एक घटना, महाराज जब क्लास खत्म हुआ तो नीचे आए, तो महाराज बिना कीर्तन के रहते नहीं है, तो उसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा था हरि नाम के लिए, तो महाराज कहते प्रसाद कितने बजे हैं, तो बिल्कुल 9 बजे उन्होंने क्लास खत्म किया, तो मैंने कहा 9:20 या 9:15 या 9:10 तक प्रसाद शुरू हो जाता है। तो लेकिन हम नीचे आ गए 9 बजे तो देखा कि बहुत कम डिवोटीज और प्रसाद भी नहीं तैयार था, 9:30 होने वाले थे, 9:05 को नीचे आए, महाराज कहते क्या करेंगे, तो कोई मृदंगा नहीं था, कोई करताल नहीं था और महाराज का अपना इंस्ट्रूमेंट था, उसने वो महाराज ने कीर्तन शुरू किया और एक भक्त को कहा कि 2 प्लेटें ले लो और उनको बजाते हुए एक ब्रह्मचारी ने, हमारे रवि प्रभु है ये बेटे, उन्होंने क्या किया 2 प्लेटें ली और महाराज गा रहे थे और डिवोटी नाच रहे थे, वो प्लेटें बजा रहे थे तो इस प्रकार से जो डिवोटीज हैं जिनको अनुराग है उनका रोक नहीं सकते, वो हर समय भगवान का नाम उनको, उन्होंने प्राण धन बना लिया है, ये है प्राण धन उन्होंने बना लिया है कि हर समय हम भगवान का नाम वो उच्चारण करते रहते हैं, ये खासियत है। और चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं काफ़ी ऐसे चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य भागवत में विशेषता भगवान नाम से संबंधित, कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर को जेल में डाला था तो वहां भी उन्होंने पूरे जेल को हरि नामामृत वन्या में बहा दिया था, मतलब बाढ़ से। बहुत वंडरफुल वो पास टाइम है हरिदास ठाकुर का। तो इस प्रकार से हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचें और फिर देखें कि ये चीज़ मैंने आज सीखी है तो क्या चीज़ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एक चीज़ मैं ट्राई करूँगा कल से या आज से जस्ट, तो फिर हमारा इम्प्रूवमेंट होता है आध्यात्मिक जीवन में दिन ब दिन। अन्यथा दिन ऐसे हमारे जा रहे हैं, निद्रा वशे गेलो रे राति दिवस शरीर साजे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि निद्रा में रात जा रही है और दिन में शरीर को सजा रहा हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी। आप देखिए हम तो प्रसाद से मुख भरते हैं, हाँ एक दो रसगुल्ला गुलाब जामुन जाते हैं तो फूल जाता है हमारा मुख, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोलो रे बोले न वदन भरी, मुंह को भर के बोलो, क्या करो भर के ऐसे जोर जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हाँ वो कहते हैं नाम बिना किछु नाही कार चौदह भुवन माझे। हाँ तो नाम के अलावा चारों चौदह लोकों में कोई चीज नहीं है जो हम ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चीजें बहुत हमें पुश करती हैं, स्पेशली ऐसे जो वैष्णव सॉन्ग्स हैं और जो चैतन्य चरितामृत के जो लॉर्ड चैतन्य के टीचिंग्स हैं, तो ये प्रेयर्स बहुत हेल्पफुल हैं और ये करते रहना चाहिए और चांट करना चाहिए। हरे कृष्ण हाँ माता जी। एक्चुअली डिवोटीज का एक गुण है ना धैर्य, उपदेश अमृत में कहते हैं ना रूप गोस्वामी क्या है उसको उत्साह निश्चया धैर्य, तो वो हमारी ये है परीक्षा है, उत्साही होना चाहिए हाँ प्रयास के लिए, उत्साह निश्चय के साथ और धैर्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुरंत कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा तो, लेकिन धैर्य रखना चाहिए, लेकिन सिंसियरली हमें लगे रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो कृष्ण जब देखते हैं कि ये व्यक्ति सिंसियरली प्रयास कर रहा है तो कृष्ण फिर प्रोवाइड करते हैं हमें वो चीज़ प्रदान करते हैं वो अगला जो धरातल है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए इस चीज़ के लिए आवश्यक है। ऐसे नहीं कि तुरंत हो जाएगा, आप सोचिए इतने लाखों करोड़ों सालों से हमने अलग अलग बॉडीज चेंज किए हैं और इतनी कई प्रकार के अनर्थाज और गंदगी इस मन रूपी दर्पण पर है, इतने ईजिली नहीं हो सकता। आप प्रयास यशोदा माता का प्रयास देखा, वो हो रही थी, उनको पसीना आ रहा था, परेशान हो रही थी, लेकिन वो प्रयास करना नहीं छोड़ा है ना। कृष्ण ने देखा ये सिंसियरली प्रयास कर रही है मदर यशोदा, तो चलो ठीक है मैं अभी ये कर देता हूँ, छोटा हो जाता हूँ, आप रस्सी बांध दो। तो ये आवश्यक है धैर्य रखें हम, लेकिन प्रयास ना छोड़े, हम सिंसियरली प्रयास करते रहें और प्रेयर्स प्रार्थना करें साथ साथ भगवान को। तो हेल्पलेस ये मूड होता है कि हेल्पलेस मुझे हेल्प चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में बिना सहायता के हम उन्नति नहीं कर सकते, हर समय मुझे डिवोटीज के शास्त्रों के वैष्णवों के गुरु के आचार्यों के हाँ सबकी हेल्प चाहिए है ना, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जो सोचे कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए हाँ वो बहुत डेंजर सिचुएशन में है। तो हेल्प सहायता चाहता है जो भक्त होता है और हर समय भगवान की कृपा पर वो निर्भर रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए हेल्पलेसनेस वो हम प्रदर्शित करते हैं असहाय अवस्था जब हम प्रेयर्स करते हैं भगवान को। तो नियमित रूप से कभी समय मिलता है तो हमें कुछ स्पेसिफिक प्रेयर्स चांट कर सकते हैं, चांटिंग में प्रेयर्स ऐड कर सकते हैं। हाँ आप देखेंगे चांटिंग हम करते हैं तो लेकिन इतना मैकेनिकल हो जाता है और नाना प्रकार के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए वो बेस्ट टाइम होता है क्या करने का, मैंने प्लान बनाने का प्लान, या जो माताजी हैं गृहिणी जो घर में कुकिंग के लिए सामान खरीदते हैं उनके लिए बेस्ट समय होता है लिस्ट बनाने का, हरे कृष्ण सब्जी राई दाल चपाती कहाँ कहाँ से क्या लाना क्या कुक करना, तो बेस्ट समय होता है चांटिंग के समय, चांट भी हो रहा है और बैकग्राउंड में ये भी हो रहा है, तो चांटिंग बैकग्राउंड में चला जाता है और एक चीज़ें फ्रंट में आती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रिपेरेशन, प्रिपेरेशन को क्या कहते हैं, तैयारी। आप देखिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए, हम पढ़ते लीलामृत में, तैयारी की उन्होंने कहा राधा दामोदर मंदिर में। जो मैनेजर्स होते हैं वो पहले प्लान बनाते हैं, योजना करते हैं ना, तैयारी करते हैं, जन्माष्टमी आ रही है तैयारी। तो सक्सेस कब होता है, जो प्रॉपर तैयारी करो आप पहले, प्रिपेरेशन। तो चांटिंग के लिए हम तैयारी करते हैं, मे भी ठंड आ रही है, बड़ा सा जैकेट डाल देंगे, शॉल ओढ़ लेंगे, टोपी डाल देंगे और फिर क्या होगी, नींद ही आ जाएगी। तो ये तैयारी तो ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल तैयारी होती है, दो प्रकार की तैयारी होती है। तो एक्सटर्नल तैयारी करते हैं हम, ठंड लग रही है, सारे दरवाजे बंद कर दो, सॉक्स पहन लो, स्वेटर डालो, कंबल डाल दो, चादर डाल दो, टोपी पहनो, और फिर ओ प्यास लगती है, पानी भी रखो, हाँ, और कई चीज़ें, और नींद भी आती है, डिवोटी भी साथ है आपको उठाने के लिए। तो एक्सटर्नल लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम मानते नहीं है। चैंटिंग में आप देखा कभी, आपको नहीं होगा रियलाइजेशन, हम सो जाते हैं कभी कभी, सोते नहीं एक्चुअली, हमारे थॉट्स हमें वो ले जाते हैं दूसरी ओर। तो कोई डिवोटी कहता है प्रभु, तो वो डिवोटी कहता है नहीं मैं सो नहीं रहा था, ईगो क्या है ये, अहंकार, ईगो एक्चुअली बहुत बड़ा समस्या है। तो ये हो गई एक्सटर्नल तैयारी। तो लेकिन इंटरनल तैयारी डिवोटी करता है प्रेयर्स के साथ, वो बैठता है। इसलिए चैंटिंग के पहले हम क्या करते हैं, नमो विष्णु पदाय, गुरु का प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र चांट करते हैं, पंचतत्व प्रणाम मंत्र चांट करते हैं, ध्यान हरे कृष्ण महामंत्र चांट करते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ भी हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रेयर्स चांट करनी चाहिए, और आप देखेंगे कि कितना चांटिंग आपका ये हो रहा है। जैसे नाहम विप्रो न चनरपति नापि वैश्य शूद्र, ये श्लोक है कि मैं सर्वंट हूँ, मैं सर्व करना चाहता हूँ हे कृष्ण, इस प्रकार से। और दूसरा ये भी है कि आप ट्राई कर सकते हैं, कल से पर्सनली हम करते हैं। तो जैसे आप चांट करते हैं तो हर राउंड, कई बार फीलिंग नहीं होता ना, चल जा रहे हैं, हाँ बस जा रहे, कई बार ऐसे लगता है चांटिंग में बस जा रहे, हरे कृष्ण कृष्ण जा रहा है चांटिंग में गोइंग, लेकिन कुछ भी नहीं लग रहा है, हाँ वो हार्ट कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, हाँ। तो बाकी चीज़ें तो थॉट्स आने ना दे, लेकिन श्रवण करें भगवान नाम को, और लेकिन साथ साथ ये भावना लाए हेल्पलेस कि कृष्णा, हाँ हे राधा गोविंद, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे निकलना है बाहर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इसी भावना से चांट करें हम। और बीच बीच में हर एक राउंड के बाद शिक्षा स्टकम के मैं तो प्रिफर करता हूँ दो श्लोकाज, एक है नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमी दृश्यमी हा जनी ना अनुराग। हाँ अब एक राउंड के बाद चांट करें और उसको मेडिटेट करें उसको, और जस्ट चांट करें, तब आपको लगेगा कृष्णसी कितना मैं दुर्भाग्य और मूर्ख व्यक्ति हूँ, कोई अनुराग नहीं है, आपने तो सारी शक्ति आपके नाम में डाल दिया और इसका समय और काल नहीं है, और फिर आप चांट करें, मेडिटेट करिए। और दूसरा है अये नंद तनुज किंकरम पतितम मा विषमे भवाम बुध कृपया तव पाद पंकज सितदुली सदृश चिंतय, कि अये नंद तनुज, कि हे कृष्ण क्या है अये नंद तनुज किंकरम पतितम भवाम बुधो, क्योंकि ये प्रेयर है किस लिए, बाहर निकलने के लिए, कि मैं अम्बुद सागर में गिरा हूँ, मुझे निकालो बाहर, हाँ जब तक नहीं महसूस होगा मुझे बाहर निकलना है तब तक चैंटिंग नहीं होगा, निकलना है बाहर, हाँ तब आप देखेंगे कि आपको चैंटिंग इतना तीव्रता आ रही है चैंटिंग में, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता। तो लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, इस प्रकार के प्रेयर्स आप ऐड कर सकते हैं, और स्पेशली स्पिरिचुअल मास्टर को प्रेयर कर सकते हैं।
इसलिए
हम इसका मतलब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते वंदो मुए आरतीज, जो एक्टिविटीज करते गुरु की वंदना करते पूजा सेवा करते, क्या कहते नरोत्तम दास ठाकुर हर समय, वंदो मुए सावधान मत, आप भगवान नाम, तो सावधान नहीं रहते हम, कॉन्शियस, हाँ भूले नहीं हम, चाहे थोड़ा टाइम लगे लेकिन रियली फोकस रहें। तो ये प्रयास और अभ्यास से अभ्यास है न तो कौनते या अभ्यास कौन डिवोटी किस प्रकार से अभ्यास कर रहा है इसका उसके ऊपर डिपेंड है ना। प्रभुपाद जैसे उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कृष्ण भावना में उन्नति जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके मनोवृत्ति पर आधारित है, एटीट्यूड पर है ना, एटीट्यूड पर आधारित है। तो वही है कि ये हमें लाना होगा, स्वयं प्रयास करना होगा। मैं भी मैकेनिक हो जाए, जैसे पता चले कि मेरा चांटिंग थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेयर्स हो रही है, तुरंत फिर से प्रयास करो उनको चांट करने का और प्रार्थना करो कृष्ण से, गुरुदेव से, ये बहुत हेल्प करता है। तब आप गुरु के प्रति आप देखेंगे कि इतना फेथ इंक्रीज हो रहा है उनको सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। हाँ, क्योंकि तब पता चलेगा कि गुरुदेव ने मुझे क्या दिया है, सबसे बड़ा धन दिया है। अभी पता ही नहीं चलता स्पिरिचुअल मास्टर ने क्या चीज़ दी है, नहीं महसूस होता। हाँ, तो तब क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दी है हरि नाम, भगवान ने कृष्ण दिया है एक्चुअली, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। ठीक, हाँ एक्चुअली वैराग्य का रूप गोस्वामी कहते ना, आपने सुना होगा कि जैसे युक्त वैराग्य की हम बात करते हैं, लेकिन युक्त वैराग्य भी बहुत महंगा होता है कई बार। तो वैराग्य यही है, हाँ, शरणागति की पहला जो ये है लक्षण है, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं अनुकूलश संकल्प प्रतिकूलश वर्जनम, वो वैराग्य है। हाँ, अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करें भक्ति में जो अनुकूल है, और प्रतिकूल चीज़ों को त्याग दें। चीज़ें और थॉट्स भी, जो थॉट्स भी हैं अनुकूल हैं वो भक्ति में उनको स्वीकार करो, प्रतिकूल को त्याग दो, तो वो वैराग्य है। वैराग्य नहीं कि हम बिल्कुल हम चीज़ें ना यूज़ करें और वस्त्र धारण नहीं करें या काफ़ी चीज़ें, तो लेकिन ये जो शरणागति का ये जो पहला स्टेप है अनुकूलश संकल्प प्रतिकूलश वर्जनम, इसको पालन करते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे डिटैचमेंट आ रहा है भौतिक चीजों के प्रति, और कृष्ण के प्रति शरणागति बढ़ती है, बढ़ेगी। तो ये हर समय रहे फोकस। हम
क्या जो हम सब बन जी रहे तो हम अपने हिसाब से पता कर लेंगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है।
नहीं पता हुआ हमें, इसलिए तो पता करने के लिए तो ये चीजें हैं, वैष्णवाज है, गुरु हैं। गुरु किस लिए है? स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर से हम जानने के लिए है ना। हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर है, वैष्णवाज है, शास्त्र है। हाँ, तो उनसे डिस्कस कर सकते, पता चल सकता है अनुकूल जो कृष्ण भावना में बाधा आ रही है उन चीज़ों से वो प्रतिकूल है। तो चर्चा करके भक्तों से, आध्यात्मिक गुरु से, तो हम समझ सकते हैं दिन ब दिन, और फिर धीरे धीरे हमारे रियलाइजेशन भी होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, पता भी चलता है दिन ब दिन। ठीक है, श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के जय, गौर प्रेमानंदे गौर भक्त वृंद की जय।